राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के मुक्त विद्यावाणी कार्यक्रम में मैं नीलम गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मैटर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे। और इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय शारदा, एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर्ड फ्रॉम जाकिर हुसैन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। सर आपका स्वागत है और हम सीधा ही चर्चा शुरू करते हैं कि मैटर क्या है। फर्स्ट आप चाहें तो उसमें कुछ पहले इंट्रो अगर जोड़ना चाहते हैं सब टॉपिक का तो आप बता दीजिए सर।
नहीं, मैटर के बारे में हमें बात करनी है तो पहले यह जानना आवश्यक है कि मैटर होता क्या है। मैटर हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं वो सब मैटर है, लेकिन फिर भी हमें एक प्रॉपर तरीके से इसे डिफाइन करना चाहिए। तो मैटर को पहले हम डिफाइन करते हैं। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, मतलब द्रव्य। मैटर यानी द्रव्य, हर वो वस्तु है, वो चीज़ है जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता
है, कुछ भार रहता है,
कुछ भार रहता है। स्थान घेरने का मतलब उसका कुछ आयतन है और द्रव्यमान का मतलब उसका कुछ भार है। तो हमारे आसपास अगर हम देखें, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, चाहे हम देखें कुर्सी है, टेबल है, ट्यूब है, पेन है हमारा, या सड़कें हैं, जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब मैटर से ही बना हुआ है। उसके विभिन्न विभिन्न रूप हैं। ऐसा माना जाता है कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इसका जो शुरू में अवधारणा थी, दो मत थे इसके बारे में कि मैटर जो है वो किस तरह से बना हुआ है। एक मत ये था कि अगर मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा लें, उसे तोड़ें तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। छोटे टुकड़े को लेके फिर दोबारा से हम ये करें, उसे तोड़ें तो और छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में विभाजित करने की प्रक्रिया अगर हम करते रहें
जी।
तो एक मत ये था कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, कोई ऐसी लिमिट नहीं आएगी जहाँ पे रुक जाए। तो यहाँ पे एक जो भी आप टुकड़ा लें उसे आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और छोटे पार्टिकल्स में। ये एक मत था। दूसरा मत ये था कि नहीं, ये हम जो छोटे करने की प्रक्रिया है एक हद तक ही कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते। जब हम पत्थर के टुकड़ों को छोटा छोटा और छोटा करते जाएंगे तो अल्टीमेटली एक ऐसा छोटा कण आएगा जिसे हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो वो टूटेगा नहीं। तो ये दो स्कूल थे। इनमें से जो पुराना स्कूल था जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल, वो ये मानते थे कि आप इस प्रक्रिया को निरंतर कर सकते हैं, यानी मैटर कंटिन्यूम है, वो उसमें कंटिन्यूम में आप जितना चाहे उसे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते रहिए, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहिए, वो पार्टिकल का नहीं बना हुआ, एक कंटिन्यूस है मैटर। लेकिन जो दूसरा स्कूल था वो ये था कि नहीं, एक अल्टीमेटली हम सबसे छोटे कण पे पहुंच जाएंगे जिसे फर्दर डिवाइड करना और तोड़ना संभव नहीं होगा। तो ये जो दूसरा मत था, ये डाल्टन वगैरह वैज्ञानिक, हमारे कणाद ऋषि, डेमोक्रेटस, इन सब लोगों का व्यू था और यही व्यू अल्टीमेटली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से सही पाया गया। तो अब ये माना जाता है कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। पार्टिकुलेट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके द्रव्य बना हुआ है, मैटर बना हुआ है। अब मैटर जो है हमारे आसपास अलग अलग अवस्थाओं में हम देखते हैं, कहीं हम पत्थर पहाड़ देख रहे हैं तो कहीं पे नदियां देख रहे हैं जिसमें जल बह रहा है, हम मिट्टी का तेल घर में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो ये दूसरी अवस्था है। हमारे आसपास हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसको इस्तेमाल करके नौकाएं चलती हैं, विंडमिल चलती हैं, तो वो तीसरी अवस्था है। तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीन अवस्थाएं हैं। तो मैटर को हम इस तरह से क्लासिफाई भी कर सकते हैं उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस के ऊपर, भौतिक अवस्था के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है अवस्था, द्रव्य की अवस्था किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है,
कैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये इस अवस्था में है द्रव्य?
एक तो हम कैसे डिफाइन करें कि कौन सी अवस्था है, दूसरा ये कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि जो मैटर है किस अवस्था में रहेगा। अगर हम कोई गिवन टेम्परेचर प्रेशर ले लें, कोई परिस्थिति लें, उस विशिष्ट परिस्थिति में जो द्रव्य है वो किस अवस्था में रहेगा। जो हमने अभी बात की थी कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, इन कणों के बीच में आपस में आकर्षण बल होता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है, जिसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या काम करती है, कणों को एक दूसरे के पास पास लाने के काम आती है, उनको जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा मैटर के अंदर एक थर्मल एनर्जी होती है, ताप ऊर्जा कह लीजिए। थर्मल एनर्जी क्या होती है, हमने किसी भी चीज़ को गर्म किया, उस गर्मी की वजह से ये कण जो है इनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ये हिलने लगते हैं और तेज़ी से हिलने लगते हैं जैसे जैसे हम इसको और ऊर्जा दें। तो दो चीज़ें काम कर रही है, जो गतिज ऊर्जा है ये कणों को एक जगह नहीं बैठने देती, उनकी गति को बढ़ाती है, एक दूसरे से दूर करने का काम करती है। तो दो फोर्सेस काम कर रही हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो कणों को पास में ला के जोड़ने का कोशिश करती है, और थर्मल एनर्जी ताप ऊर्जा जो इन कणों को एक दूसरे से दूर करने का प्रयास करती है। इन दोनों फोर्सेस के बीच में कंपटीशन होता रहता है और इनमें से कौन सी फोर्स स्ट्रांग है इसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी अवस्था में द्रव्य रहेगा। अब जैसे हम बात करें, तीनों द्रव्य अवस्थाओं के बारे में हम बात करते हैं। ठोस अवस्था, सबसे आसपास जो हमें चीज़ें दिखती हैं अधिकतर ठोस अवस्था में ही दिखती हैं, सॉलिड सी देखते हैं हम। तो ठोस अवस्था के पहली तो बात यह कि हम किसे ठोस कहेंगे, इसके विशिष्ट गुण क्या हैं। ठोस जो होते हैं उनकी एक निश्चित आकृति होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, और इनका आयतन भी निश्चित होता है, यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम है, और मास द्रव्यमान भी निश्चित होता है। तो ये तीन चीज़ें, द्रव्यमान, आकृति और आयतन, मास, शेप एंड वॉल्यूम, ये तीनों इसके डेफिनेट होते हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे अगर द्रव्य की अवस्था है तो उसे हम कहेंगे कि ये ठोस अवस्था में है। अब इसमें जो हमने कहा भाई आकृति निश्चित होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हम चाहें तो उसे बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, हम मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा लिया, हमने हथौड़े से मारा जोर से, वो टूट गया, या किसी धातु का कोई पीस लिया, टुकड़ा लिया, उसे हथौड़े से पीटा तो शीट बना सकते हैं, उसे हम खींच ले तो उसे तार में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो आकृति है ये बदली जरूर जा सकती है, लेकिन बदलने के लिए हमें इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम ना करें तो इसकी आकृति निश्चित है। तो निश्चित आकृति से हमारा मतलब यह है कि अगर हम इसे डिस्टर्ब ना करें तो आकृति निश्चित रहेगी। आयतन जो है, वॉल्यूम, वो सिर्फ तापमान के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी चीज़ का, उसकी नेचर और टेम्परेचर। तो जब तक टेम्परेचर उसका फिक्स्ड है तब तक उसका आयतन नहीं बदल सकते। हम शेप तो बदल सकते हैं, हमने पत्थर के टुकड़े का एक आयतन था उसे हमने तोड़ के चार टुकड़े बना लिए, उन चारों का मिला के आयतन उतना ही होगा जितना पहले था। धातु का हमने टुकड़ा लिया, उसका एक आयतन था, उसे हमने हथौड़े से पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर दिया, शीट का भी आयतन उतना ही होगा,
और अगर हमने तार बनाए,
तो उसका भी आयतन उतना ही रहेगा। तो आयतन जो है वो उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता, शेप के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो केवल दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो वो क्या पदार्थ है, उसके अपने कुछ गुण हैं, और दूसरा तापमान क्या है। तो किसी एक पदार्थ का आयतन उसके तापमान के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अब ये जो इसके ठोसों के जो गुण हमने बात किया कि इनमें डेफिनेट मास है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ऐसा क्यों है, हमने पहले बात की थी कि जितना भी द्रव्य है वो कणों से मिलके बना हुआ है और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। जो ठोसा अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कण हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, वो अपने एक निश्चित स्थान पर स्थित हैं, वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते। तो पहली बात तो ये कि जो कण है उनका स्थान निश्चित है। दूसरा, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। जब डिस्टेंस कम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग होती हैं। ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हैं कि जो थर्मल एनर्जी है उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए थर्मल एनर्जी इन पार्टिकल्स को दूर करने का प्रयास तो करती है लेकिन कर नहीं पाती।
इसीलिए ऐसे हाथ से अगर प्रेस करने की कोशिश तो वो दबते नहीं।
हाँ, दबेगा इतनी आसानी से नहीं दबेगा। अगर हम इसे कंप्रेस करने की कोशिश करें किसी भी ठोस को तो कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमने रेत ली, रेत को लेके एक सिरिंज में भर दें और सिरिंज का जो आगे का नुकीला सिरा है उसे बंद कर दें रबड़ के स्टॉपर से, या इवन उंगली से भी बंद कर दें और उसके प्लंजर से प्रेशर लगाएं, हम दबा नहीं पाएंगे उसको, उसका वॉल्यूम कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि जो पार्टिकल हैं ऑलरेडी बहुत एक दूसरे के पास हैं और अपनी उनकी स्थिति जो है वो निश्चित है। तो इनकम्प्रेसिबल हैं, जितने सॉलिड्स हैं इनकम्प्रेसिबल हैं। तो सॉलिड्स का हम ढेरी बना सकते हैं, रेत की हम ढेरी बना लेते हैं, मिट्टी की बना लेते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं उनकी बना लेंगे, ये किसी भी और अवस्था में हम पॉसिबल नहीं है कि हम ढेरी बना सकें। लेकिन जो ठोस हैं वो फ्लो नहीं करते, उनको बहा नहीं सकते। जैसे पानी बह जाता है, हवा बहती है, लेकिन ठोस जो है वो बहेगा नहीं, रेत बहेगी नहीं। तो ये इसके विशिष्ट गुण हैं। तो विशिष्ट गुण किस कारण है, जैसे हमने बात की थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, और जो थर्मल एनर्जी है बहुत ही कम है, वो इन पार्टिकल्स को अपनी जगह से हिला नहीं सकती। लेकिन अगर हम तापमान बढ़ाएं तो थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने ही हैं। जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल्स अपनी जगह वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, स्पंदन शुरू हो जाता है इनमें। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो इनका वाइब्रेशन है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जब वो एम्पलीट्यूड बढ़ा तो पार्टिकल में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आया, लेकिन अभी भी अपनी जगह पर स्थित है। एक ऐसे टेम्परेचर आएगा जिसके ऊपर थर्मल एनर्जी अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ओवरकम कर सकती है। जैसे ही वो अवस्था आएगी, अब जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे और उनका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा था, पहले तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जगह से वापस अपनी जगह आ जाते थे, लेकिन अब ऐसी अवस्था आई कि वो दूर गया तो उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ और अलग हो गया वो। जब इस तरह से पार्टिकल अलग होना शुरू हो जाए एक दूसरे से, इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। जो ठोस है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस टेम्परेचर के ऊपर ये होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। हर ठोस का एक विशिष्ट गलनांक है, वो उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर निर्भर करता है। अब दूसरी अवस्था है जो द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट कैसे हमें मिली, सॉलिड्स को मेल्ट करके। यहाँ पे हमने देखा कि सॉलिड्स में तो जो पार्टिकल थे उनकी जगह निश्चित थी,
आयतन भी उसका निश्चित,
आयतन भी निश्चित था। अब यहाँ पे हमने देखा कि ठोस, ये जो ठोस है कैसे बदला द्रव में, जब थर्मल एनर्जी बहुत बढ़ गई तो पार्टिकल्स ने अपनी जगह छोड़ दी। इसका मतलब लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्थिति निश्चित नहीं है, दे आर मूविंग ऑल द टाइम, वो हमेशा घूम रहे हैं लेकिन एक निश्चित आयतन के अंदर अंदर। ऐसा कैसे कि निश्चित आयतन के अंदर रहते, क्योंकि अभी भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ये फोर्सेस अभी भी स्ट्रांग हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि मॉलिक्यूल्स को बांधे हुए हैं, उतना स्ट्रांगली नहीं जितना सॉलिड स्टेट में था, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि वो मॉलिक्यूल्स अभी भी एक हद से आगे दूर नहीं जा सकते। उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ऑलमोस्ट निश्चित है, और वो सिर्फ इतना होता रहता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं, उनमें आपस में कोलिजन होता रहता है। तो कोलिजन के टाइम थोड़ी सी वेलोसिटी कम होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन वो एक हद से आगे एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। इस कारण जो द्रव है उनका आयतन निश्चित होता है। तो आयतन तो निश्चित हो गया लेकिन पार्टिकल अपनी जगह फिक्स नहीं है, इसलिए शेप आकार जो है वो निश्चित नहीं है। हाँ, द्रव्यमान निश्चित होता है, तो मास डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है।
वो जिसमें डालेंगे उसी का शेप,
हाँ, जिस बर्तन में भी हम डालेंगे जो लिक्विड है उसी की शेप ले लेते हैं। तो अगर हम पानी को गिलास में डालें तो पानी की गिलास की शेप बन जाती है, अगर हम उसे कप में डालें तो कप की शेप बन जाती है, किसी हांडी में डालें तो हांडी की शेप बन जाती है। तो जो लिक्विड अपने वेसल की, अपने बर्तन की शेप इख्तियार कर लेते हैं। तो लिक्विड स्टेट के यही विशेष गुण हैं। लेकिन लिक्विड स्टेट में अब ये भी है कि पार्टिकल एक दूसरे से अलग हैं, घूम रहे हैं, लिमिटेड वॉल्यूम के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन कोई कोई पार्टिकल ऐसा होता है जो ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, वो लिक्विड स्टेट से अलग भी हो सकता है। जब लिक्विड स्टेट से अलग हो गया तो वो वेपर फॉर्म में चला जाता है, यानी कि गैसीय अवस्था में चला जाता है।
जैसे सॉलिड अगर वो तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर ज़्यादा मिलती है तो वो लिक्विड में बदल जाता है,
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है।
लिक्विड में अगर ये ज़्यादा है,
थर्मल एनर्जी की अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि एक निश्चित तापमान के ऊपर भी जो लिक्विड के कण हैं वो घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है, उनकी सेम नहीं है। काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी निश्चित नहीं है, बदलती रहती है। क्यों बदलती रहती है? क्योंकि इनके आपस में कोलिजन हो रहे हैं, कोलिजन के दौरान एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें होता है कि एक मॉलिक्यूल थोड़ा धीरे हो गया पहले से, दूसरा तेज चलने लगा। तो मान लीजिए दूसरा मॉलिक्यूल इतना तेज चलने लगा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम कर सकती है, तो लिक्विड स्टेट छोड़ के वेपर फेज में चला जाएगा। इसी कारण जो लिक्विड्स हैं वो इवेपोरेट करते रहते हैं, उनके वेपर बनते रहते हैं, चाहे टेम्परेचर हम ना बढ़ाएं तो भी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो ये प्रक्रिया पूरी और तेज़ी से होगी, कोलिजन और ज़्यादा स्ट्रांगली होंगे, ज़्यादा कोलिजन होंगे और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो एक दूसरे से दूर जा सके, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बॉइलिंग शुरू हो जाती है, लिक्विड की उबलना शुरू हो जाता है और वो पूरी तरह से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हर लिक्विड का एक करेक्टरिस्टिक है, बॉइलिंग पॉइंट को हम क्वथनांक कहते हैं। तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने स्ट्रांग हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिक्विड स्टेट फिर से दोहरा लें कि इसमें डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, शेप डेफिनेट नहीं है, इवेपोरेशन होता रहता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लिक्विड स्टेट वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं मैटर की तीसरी स्टेट यानी कि गैसियस स्टेट के बारे में, तो गैसीय अवस्था की बात करते हैं। तो हमने जब लिक्विड स्टेट का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि अगर लिक्विड को थर्मल एनर्जी दी जाए तो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी है एक तरह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेती है और जो पार्टिकल लिक्विड स्टेट से फ्री होके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर गैसेस की बात करें, हमारे आसपास हम गैसेस को देख तो नहीं सकते कॉमनली, लेकिन हवा को महसूस कर सकते हैं, जब हवा चलती है हमें महसूस होती है, और हवा आप जानते हैं कि बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रमुख हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर हैं, थोड़ी सी मात्रा में हाइड्रोजन है, तो बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन अधिकतर गैसेस को हम देख नहीं सकते। एकाध गैस है जिनका कलर होता है, जैसे क्लोरीन है, हल्की हरे से रंग की होती है, येलो स्क्रीन, उसे हम देख पाएंगे। आयोडीन है, उसके वेपर्स वॉलेट कलर के होते हैं, उसे देख पाएंगे, लेकिन जब वो बनाएंगे तभी देख पाएंगे क्योंकि हमारे आसपास वो वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो गैसेस को हम महसूस ज़रूर कर सकते हैं, अपने आसपास देख नहीं सकते। जो गैसियस स्टेट है उसके बारे में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो यह है, पहले आयतन इनका निश्चित नहीं है, इनका आकार भी निश्चित नहीं है, ना आकार ना आयतन, यानी कि शेप और वॉल्यूम कुछ भी निश्चित नहीं है। तो कितना इनका वॉल्यूम होगा ये डिपेंड करता है कि जिस वेसल के अंदर ये हैं गैस उसका जितना वॉल्यूम है सारे स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेती हैं, तो यानी कि जो वेसल का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम बन जाता है। अगर हम वॉल्यूम उसका बढ़ा दें, मान लीजिए गैस हमने एक सिलेंडर पिस्टन में ली हुई है, तो शुरू में मान लीजिए हमने पिस्टन को काफ़ी अंदर रखा हुआ है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, पिस्टन को धीरे से हमने बाहर कर दिया, वॉल्यूम बढ़ गया अंदर, तो गैस फिर से सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो गैस का वॉल्यूम उतना ही है जितना उसके वेसल का वॉल्यूम है। अगर हम इसका रिवर्स करें, मान लीजिए हमने सिरिंज को पिस्टन को बाहर खींचा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, उसके बाद अगर हम उसे अंदर करें तो गैस कंप्रेस हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये गैसेस का एक सबसे विशिष्ट गुण है कि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी है, उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं दाब लगाकर, प्रेशर अप्लाई करके। अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो गैस को काफ़ी हद तक हम उसके आयतन को कम कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है इतना नहीं कि जितना हम चाहें उतना इसको दबा लें, उतना पॉसिबल नहीं है। एक हद के आगे अगर हम इस पर दाब लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम कम तो हो जाएगा, लेकिन वो पार्टिकल्स इतने एक दूसरे के पास आएंगे कि उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स में बदल जाएगी, उसके आगे हम उसे और कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, ये इसका एक विशिष्ट गुण है। लिक्विड्स की तरह से गैस भी बह सकती है
जी।
लेकिन इसकी ढेरी नहीं बना सकते हम, रिजिड नहीं है, ये फ्लो करती है, ये गैस के जो गुण हैं। अब गैसों का जो कंप्रेसिबिलिटी है इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीएनजी है, सीएनजी के ऊपर वाहन चलते हैं, बहुत सारी बसों पे आपने लिखा देखा होगा सीएनजी, जो ऑटो रिक्शा हैं दिल्ली में वो सीएनजी पे चलते हैं। तो सीएनजी क्या है, इसका फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ साथ मिलती है, उसी को कंप्रेस कर देते हैं, बहुत कम आयतन में एक सिलेंडर में भर देते हैं ताकि उसकी अधिक मात्रा स्टोर की जा सके और उसका हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
घरों में जो हम LPG इस्तेमाल करें वो भी गैस है?
जो LPG है वो भी गैस है, लेकिन वो कंप्रेस नहीं है, वो लिक्विफाइड है। उसे हम इतना कंप्रेस करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। तो जब तक वो सिलेंडर के अंदर है तब तक लिक्विड है, लेकिन जैसे ही वो बाहर गैस पे चूल्हे पे आती है वाल्व खोलने पे, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और जो हम इस्तेमाल करते हैं चूल्हे में वो गैसियस फॉर्म है उसकी। तो गैसेस का ये जो प्रॉपर्टी है, सवाल है कि गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी है, लिक्विड स्टेट में भी नहीं है, सॉलिड स्टेट में भी नहीं है, ऐसा क्यों? गैसेस में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और उनके बीच में फ्री स्पेस होता है, इसीलिए जब हम प्रेशर अप्लाई करें तो मॉलिक्यूल्स को हम एक दूसरे के नज़दीक ला सकते हैं, यानी कि उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेट्स के बारे में हमने बात की। तो अगर इनका कंपैरेटिव हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसे आयतन, घनत्व, डेंसिटी, शेप और तरलता और संपीर्णता, इनकी अगर बातें करें तो जो सॉलिड स्टेट है इसमें आयतन निश्चित है, द्रव में भी निश्चित आयतन है, लेकिन गैस का आयतन अनिश्चित है, इनडेफिनेट वॉल्यूम है, सॉलिड और लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस की बहुत कम होती है, और लिक्विड की बीच में, सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है लेकिन गैसेस से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम शेप की बात करें तो जो केवल सॉलिड स्टेट है जिसमें शेप डेफिनेट है, लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों की शेप डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है,
वो अपना
जिस वेसल में वैसी ही शेप ले लेते हैं, है ना। अगर हम बहने की बात करें, तरलता की बात करें, तो जो ठोस हैं, सॉलिड्स हैं, वो तो फ्लो नहीं करते, लेकिन गैसेस और लिक्विड दोनों फ्लो करते हैं। और अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में तो नेग्लिजिबल है, लिक्विड्स में भी नेग्लिजिबल है, सिर्फ गैसियस स्टेट में ये काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अगर हम कोई द्रव्य लें और उसका वो एक डेफिनेट अवस्था में है, उसका हम तापमान और दाब बदलें तो उस पर क्या प्रभाव होगा? तो
इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इस,
हाँ, ये इससे और भी हमें इनके नेचर के बारे में समझने में आसानी होगी। तो द्रव की किसी एक अवस्था पे अगर हम ताप बढ़ाएं तो क्या होगा, तापमान कम करें तो क्या होगा, कंप्रेस करें, प्रेशर बढ़ाएं तो क्या होगा, कम करें तो क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। हमने जैसे पहले भी बात किया था कि अगर हम एक सॉलिड लें, उसे हीट करें, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशंस के फॉर्म में जो होती है वो वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, और उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर वो सॉलिड मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने का मतलब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि अगर हम तापमान बढ़ाएं तो सॉलिड जो है, ठोस जो है, वो द्रव अवस्था में आ जाता है, और अगर हम लिक्विड को हीट करते जाएं तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। जैसे ही हम थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनकी मूवमेंट बढ़ती जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर लेगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे और जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम गैस लें और उल्टा करें, ठंडा करें, तो उल्टी प्रक्रिया होगी कि धीरे धीरे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कम होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि मॉलिक्यूल इतना पास हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स को दोबारा वापस दूर नहीं जाने देंगी, तो जो गैस है वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी,
वो लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो,
हाँ, लिक्विड को और अगर हम आगे ठंडा करें, उसका टेम्परेचर कम करते जाएँ, तो लिक्विड में भी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे और एक टेम्परेचर ऐसा पहुंचेगा, फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पे कि दो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आके फिर दूर नहीं जा पाएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जब ये स्टेज आती है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स हो गई, तो हम कहते हैं कि लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई हो गया, इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट हम कहते हैं।
सर, इसका ना एक अच्छा सा चित्र हमारी लर्नर्स आप अपनी पुस्तक खोल के देख सकते हैं, उसमें बना हुआ है, काफी अच्छे से वो एक्सप्लेन किया गया है, जैसे सर ने बताया वो सभी बातें उस वाले चित्र में दी गई हैं।
अब दूसरी तरफ अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर? अगर हम गैस की बात करें, गैस को लें, तो हमने देखा था कि गैसों की एक प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गैस लें, उसे कंप्रेस करें। जब कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो रहा है, उनके बीच का स्पेस कम हो रहा है। अगर हम एक हद तक कंप्रेस इतना कर दें कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाएं, तो जैसे जैसे वो नज़दीक आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती जाती हैं, तो एक स्टेज पे वो फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो जाएंगे कि मॉलिक्यूल दोबारा से एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, चाहे हम प्रेशर को बाद में रिलीज भी कर दें। जब ऐसा होता है तो जो लिक्विड है वो कंडेंस हो जाता है, लेकिन गैस को लिक्विड फॉर्म में कंडेंस करने के लिए सिर्फ कंप्रेशन से उसका एक तापमान जो है बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। हर पदार्थ का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से अगर कम है टेम्परेचर, तब तो कंप्रेशन से हम गैस को लिक्विड में परिवर्तित कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर लिक्विड है उसे हम ठंडा करना शुरू करें तो उसके ऊपर वो प्रेशर बढ़ाते जाएं, अगर उस पर भी प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर जाके लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि हम जो द्रव है उसकी अवस्थाओं को ताप और दाब दोनों की ही हेल्प से परिवर्तित कर सकते हैं एक दूसरे में। तो आपके बुक में एक चित्र है 2.3 जिसमें द्रव की अवस्थाओं के अंतर रूपांतरण को दर्शाया गया है। जैसे ठोस को दिखाया है कि ठोस को अगर द्रव में करना है तो पिघलने से हो जाएगा, और जो द्रव है उसका हिमीकरण यानी फ्रीजिंग से वो ठोस में दोबारा परिवर्तित हो जाता है। द्रव को वाष्पन से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस को संघनन से कंडेंसेशन से दोबारा द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
मैंने पहले ही बोला था कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन,
और ठोस जो है उसको सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन से गैस में डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और निक्षेपण यानी डिपोजिशन से गैस को दोबारा ठोस में बदल सकते हैं। ये जो सब्लिमेशन और डिपोजिशन की बात है, ये सारे सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, कुछ ही सॉलिड्स करते हैं, जिनमें से हम उदाहरण अगर लें तो कपूर जिसे हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं वो सब्लाइम होता है, उसे सब्लिमेट कर सकते हैं, आयोडीन को कर सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को कर सकते हैं। तो थोड़े से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम नेफ्थलीन को कर सकते हैं, बहुत कम पदार्थ ऐसे हैं जो डायरेक्टली सब्लाइम होते हैं, ठोस से सीधा ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। बाकी अधिकतर चीज़ों को बदलने के लिए हमें पहले लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद फिर गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है।
लर्नर्स हमने बात की थी गैस की, और गैस और ठोस और गैस के जो इंटर द्रव के जो इंटरचेंजेस हैं कैसे एक दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं, उस पर विजय शाह सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करते हैं कि वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सर अगला उसका जो टॉपिक है वो हम लेते हैं तत्व यौगिक मिश्रण।
हाँ, बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं मैटर और उसके क्लासिफिकेशन की। तो मैटर की इतनी वैरायटी है हमारे आसपास कि उसे क्लासिफाई करें तभी उसको स्टडी करने में हमें आसानी होगी, अदरवाइज मुश्किल होगा। तो जो हमने पहले अभी बात की थी तीन अवस्थाओं की, सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट की, उसे कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक दूसरे तरीके से भी हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं जिसे कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन,
जिसके अंदर तत्व यौगिक
केमिकली क्लासिफाई करने के लिए भी तीन कैटेगरीज में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। एलिमेंट्स यानी तत्व, कंपाउंड यानी यौगिक, और मिक्सचर यानी मिश्रण। तो इन तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। तब एक एक के बारे में हम जानते हैं कि क्या है। एलिमेंट तत्व क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। तत्व जो हैं वो मैटर का बेसिक फॉर्म है, सबसे बेसिक फॉर्म है। बेसिक फॉर्म का मतलब ये है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनसे मिलकर पूरा मैटर बना है। जैसे घर हमारे सारी बिल्डिंग्स ईंटों से मिलकर बनी हैं, तो ईंटों को अलग अलग तरीके से जोड़ने से अलग अलग आकार की बिल्डिंग्स बन जाती हैं। तो इसी तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनके मिलने से यौगिक बनते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ये मैटर की सबसे बेसिक फॉर्म है। इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, ये हमने जाना कि मैटर की पार्टिकुलेट नेचर है, यानी मैटर पार्टिकल से मिल के बना हुआ होता है। जो सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का उसे हम एटम कहते हैं। एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है
जी।
और एटम का जो सबसे विशिष्ट गुण है वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर उसको कैरेक्टराइज करता है कि वो किस एलिमेंट का एटम है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं। तो एलिमेंट मैटर की वो फॉर्म है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बनी हो। एक ही तरह से मतलब हमारा सिर्फ एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास अलग हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, तो इसलिए हम सिर्फ एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बेसिक फॉर्म है मैटर की, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन करते हैं डिफरेंट रेशोज़ में, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं कि जैसे हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स हैं, ये अगर कंबाइन करते हैं तो वाटर बन सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन सकती है। तो जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे बेसिक फॉर्म हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है हमारी वो है मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स हैं, दूसरी कैटेगरी है कंपाउंड्स। जो कंपाउंड्स हैं वो जैसा भी हमने बात की थी एलिमेंट्स के मिल के उसके जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया भी था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके एटम मिलके वाटर जल वो भी बनाते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है इनके रेशो का। जैसे वाटर जो है उसमें दो एटम हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के एक एटम से कंबाइन करते हैं तो जल बन जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में दो ऑक्सीजन के एटम दो हाइड्रोजन के एटम से मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। तो जो कंपाउंड है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से, रासायनिक तरीके से मिलने से बने हों, यानी कि केमिकली कंबाइन हो। व्हाट आर कंपाउंड्स? कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। तो बहुत जो यौगिक हैं इनका नंबर बहुत ज्यादा है, जो एलिमेंट्स हैं इनका नंबर रिलेटिवली बहुत कम है। प्रकृति में लगभग 90-91 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जो टोटल हमें इस समय एलिमेंट्स ज्ञात हैं वो 118 है। जो बाकी के जो नेचर में नहीं पाए जाते उन्हें हम आर्टिफिशियल तरीके से, सिंथेटिक तरीके से बनाते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन कर करके। तो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं जिनमें से लगभग 90 के करीब नेचुरल एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो हम डिफरेंट कंपाउंड्स देखते हैं हमारे आसपास वो मिलियंस एंड मिलियंस हैं। तो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बने? जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से। जो हम इस्तेमाल करते हैं अधिकतर हम कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्स डायरेक्ट हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। जो एलिमेंट्स करते हैं इस्तेमाल उनमें मोस्टली मेटल्स हैं जो उनको हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन इनके कंपाउंड्स का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? कि कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है कंपाउंड और उसमें किस एलिमेंट के कितने एटम हैं। जो कंपाउंड है उसकी जो प्रकृति है, गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज हैं, वो उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती हैं जिनसे मिलके वो बना हो। दोबारा से अगर हम जल का ही उदाहरण लें तो हाइड्रोजन जो है हाईली कम्बस्टिबल है, बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन जो है सपोर्टर ऑफ कम्बशन है, वो जलने में चीज़ों की सहायक होती है, लेकिन इन दोनों से मिलके बना जल अग्नि को बुझाता है। यानी कि जल की प्रकृति बिल्कुल अपोजिट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऐसे हम देखें कार्बन कोयला, ऑक्सीजन वो गैस जिससे हम सांस लेते हैं, हाइड्रोजन दूसरी गैस। अगर हम तीनों को देखें इनकी प्रॉपर्टीज और इनसे मिले मिलके बने कंपाउंड, उनमें से एक उदाहरण लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज सॉलिड है, खाने में मीठा है, हमें एनर्जी देता है, लेकिन इसका क्या कार्बन से रिजेम्बलेंस है, क्या हाइड्रोजन से डायरेक्ट रिजेम्बलेंस है, क्या ऑक्सीजन से है? नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका गुणधर्म, उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग होती है उन एलिमेंट से जिनसे कि मिलके वो बना हो। जो तीसरी कैटेगरी है मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन में, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर क्या होगा? जब किसी एक सैंपल में, किसी मैटर में दो या दो से अधिक यौगिक हों तो उसे हम, यौगिक हों या तत्व हों, दो तत्व हों या दो यौगिक हों या उनसे अधिक हों, उसे हम मिक्सचर कहते हैं यानी मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण जो है उसकी खासियत क्या है? कंपाउंड से अलग उसकी खासियत ये है कि जहाँ कंपाउंड के जो गुण हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं, मिश्रण के जो गुण हैं वो उन यौगिकों या तत्वों का जिनसे मिलके वो बना है उसके गुण वही होते हैं जो जिनसे वो मिलके बना है। तो अगर हम मान लीजिए हम चीनी और नमक इनको मिला दें तो एक मिश्रण बन गया। अब ये जो मिश्रण है वो उसमें कुछ पार्टिकल मीठे होंगे कुछ नमकीन होंगे, तो दोनों के गुण धर्म है, है ना। अगर हम सैंड और सॉल्ट ले लें, रेत और नमक को मिलाएं, तो जो मिश्रण बनेगा उसमें दोनों के गुण धर्म होंगे। जैसे जो सैंड है पानी में घुलती नहीं है लेकिन नमक घुल जाता है, तो अगर हम मिश्रण को लेंगे तो उसका एक हिस्सा घुल जाएगा, तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी। तो मिश्रण में जो है ये बेसिक जो गुण धर्म है वो होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, जो उनके गुण धर्म है वही रहते हैं। मिश्रण को आगे हम दो और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं, एक होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनमें अच्छी तरह से मिक्सिंग की गई हो। जैसे हम नमक को पानी में घोल दें तो जो सॉल्यूशन बनता है वो नमकीन होता है और सब तरफ से बराबर का नमकीन होता है। ऐसे ही हम शरबत बनाते हैं चीनी पानी में घोल के, तो सब जगह से बराबर की मीठी होती है, मिठास बराबर होती है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनका जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म होता है, सब जगह एक जैसा ही कंपोजिशन होता है। हेटरोजीनियस, जैसे हमने बात की थी नमक और रेत के मिक्सचर की, तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स के गुण धर्म अलग है, यानी कि उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो मिश्रण दो प्रकार के हुए, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो मैटर है उसे हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं अपने जो स्टडी है उसकी सहूलियत के लिए। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, जो उसकी तीन फिजिकल स्टेट्स में हमने बात की थी, सॉलिड लिक्विड और गैस, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, और मिक्सचर के दो क्लासेस की बात की थी, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस। तो इस तरह से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं।